पृष्ठ संख्या 89, सप्तम अध्याय, बुद्धिवाद डेकार्त, रेने डेकार्त। रेने डेकार्त का जन्म फ्रांस के तुरेन नगर में हुआ। उनका शरीर निर्बल किंतु बुद्धि प्रबल थी। कैथोलिक मत के जेसुइट पादरियों की शिक्षा संस्था में वे पढ़े थे। पेरिस का विलासी जीवन अप्रिय लगने के कारण उन्होंने सैनिक जीवन अपनाया। वे यूरोप में खूब घूमे थे, फिर वे दार्शनिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए। वे 20 वर्ष तक हॉलैंड में रहे। एकांत प्रिय होने के कारण लोगों से बचने के लिए उन्होंने 40 बार अपना मकान बदला। स्वीडन की रानी ने उनसे दर्शन का अध्ययन करने के लिए उन्हें स्वीडन आमंत्रित किया। वहीं उनकी मृत्यु हुई। डेकार्त प्रसिद्ध गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। गणित और ज्योत विद्या में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अन्वेषण किए हैं। दर्शन के आधुनिक युग के तो वे पिता ही कहे जाते हैं। उनके प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ हैं दार्शनिक पद्धत पर विचार या डिस्कोर्स डे ला मेथड, प्राथमिक दर्शन पर मनन, मेडिटेशंस डे प्राइमा फिलोसफिया और दर्शन के सिद्धांत प्रिंसिपिया फिलोसफिया। आधुनिक युग की सभी विशेषताएं उनमें प्रस्फुट हुई हैं। उन्होंने दर्शन को एक नई पद्धति दी, जिसके कारण उन्हें आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। उनके बहुत से सिद्धांत अमान्य हो चुके हैं, किंतु उनकी पद्धति आज भी मान्य है। डेकार्त का महत्व उनकी पद्धति और उसके मौलिक सिद्धांतों के कारण है, उनके दार्शनिक मत के कारण नहीं। दर्शन के लिए उन्होंने सुदृढ़ नींव बनाई। उस नींव पर उन्होंने जो प्रासाद खड़ा किया वह तो ढह चुका, किंतु वह नींव आज भी वैसी ही सुदृढ़ है और विविध दार्शनिक प्रासाद उसी पर बनते बिगड़ते रहे हैं। डेकार्त गणित के अत्यंत भक्त थे। उनको गणित प्रेमी दार्शनिक कहने के बजाय यदि दर्शन प्रेमी गणितज्ञ कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। गणित में निश्चयात्मक है, उसके सिद्धांत निर्विवाद और निःसंदेह सत्य हैं। दर्शन में विवाद और अराजकता है। इसका कारण डेकार्त ने यह बताया कि गणित की नींव सुदृढ़ है और दर्शन की नींव बालू की बनी है। पृष्ठ संख्या 90। अतः डेकार्त ने निश्चय किया कि दर्शन को भी गणित की सुदृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। गणित केवल बुद्धि पर निर्भर है और दर्शन अनुभव पर, किंतु यदि अनुभव को गणित की सुदृढ़ नींव पर खड़ा किया जाए तो दर्शन की भी अचल प्रतिष्ठा हो सकती है। दर्शन का लक्ष्य है सत्य की खोज। सत्य के दो रूप हैं, स्वतः सिद्ध और प्रमाण जन्य। स्वतः सिद्ध सत्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, वह सत्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत स्वयं प्रमाणों की सत्ता इस स्वतः सिद्ध सत्य से सिद्ध होती है। यदि स्वतः सिद्ध सत्य न हो तो प्रमाणों का अस्तित्व ही न हो। प्रमाणों से हम किसी वस्तु के सत्यत्व की सिद्धि या उसके सत्यत्व का निराकरण करते हैं। प्रमाणों का कार्य है सिद्ध या असिद्धि, मंडन या खंडन, विधान या निषेध, स्वीकरण या निराकरण। सिद्धि और असिद्धि रूपी कार्य स्वविकल्प बुद्धि के आधारभूत मौलिक नियमों के अनुसार किया जाता है। ये मौलिक नियम स्वतः सिद्ध हैं। इन नियमों के कारण ही प्रमाणों में प्रमाण तत्व आता है। ये प्रमाणों के प्राण हैं। इन नियमों के द्वारा ही प्रमाण किसी वस्तु को सिद्ध या असिद्ध करते हैं। यदि इन नियमों को भी किसी अन्य नियम से सिद्ध करने की आवश्यकता मानी जाए तो अनावस्था दोष आता है। अतः बुद्धि के आधारभूत इन मौलिक नियमों को स्वतः सिद्ध सत्य मानना पड़ता है। स्वतः सिद्ध सत्य का साधन है निर्विकल्प अतींद्रिय अनुभूति। प्रमाण जन्य सत्य का साधन है स्वविकल्प बुद्धि। स्वतः सिद्ध सत्य के आधार पर ही स्वविकल्प बुद्धि प्रमाण जन्य सत्य की प्रतिष्ठा करती है। जैसे गणित में कुछ मौलिक नियमों के आधार पर अन्य नियम सिद्ध किए जाते हैं, वैसे ही स्वतः सिद्ध सत्य के आधार पर बुद्धि अपने सत्य को प्रमाणित करती है। इस प्रकार डेकार्त की दर्शन पद्धति के दो अंग हैं, एक तो निर्विकल्प अतींद्रिय अनुभूति जिसके द्वारा सत्य का स्वरूप अनायास इतने सुस्पष्ट रूप में प्रकाशित हो जाता है कि उसमें संदेह का कोई अवकाश नहीं रह पाता, और इसीलिए उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य को देखने के लिए दीपक के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती। और दूसरा स्वविकल्प तर्क जो निर्विकल्प अनुभूत की ज्योति से जगमगाता है, इस स्वविकल्प तर्क की मुख्य प्रणाली है निगमन, क्योंकि तर्क का कार्य है निर्विकल्प अनुभूत के स्वतः सिद्ध नियमों के आधार पर अन्य नियमों को प्रमाणित करना है। इसका यह अर्थ नहीं कि डेकार्त आगमन प्रणाली को नहीं मानते या उसका कोई उपयोग नहीं समझते। पृष्ठ संख्या 91। उनका तात्पर्य यह है कि आगमन अपने सत्यत्व के लिए निगमन पर निर्भर है। निसंदेह आगमन तर्क का आवश्यक अंग है, किंतु बिना निगमन के आगमन व्यर्थ है। निगमन प्रधान है, आगमन उसका सहायक है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि डेकार्त के दर्शन में आगमन का कोई उपयोग नहीं, गलत है। डेकार्त ने आगमन के महत्व को खूब समझाया है। उन्होंने मन के और बाह्य पदार्थों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को आवश्यक समझा। प्रकृति की खुली हुई विशाल पुस्तक के अध्ययन में उनकी पर्याप्त रुचि रही है। स्वसंवेदन उनके दर्शन का केंद्रीय अनुभव है, किंतु उन्होंने यह कहा है और ठीक कहा है कि आगमन अपनी सत्यता के लिए निगमन पर निर्भर है। आगमन तथ्यों या घटनाओं की गणना पर तो निर्भर है नहीं, वह निर्भर है व्याप्ति पर, और व्याप्ति बिना निगमन के बन नहीं सकती। व्याप्ति का अर्थ है दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव की सिद्धि। यह सिद्धि होती है निगमनात्मक तर्क से, और इसकी निश्चयात्मक सहजता, सार्वभौमता और अबाधिता आती है स्वतः सिद्ध अनुभूति से। इंद्रिय प्रत्यक्ष से केवल विशेषों का प्रत्यक्ष होता है। सामान्य की प्रतीति कभी नहीं हो सकती, अतः इंद्रिय प्रत्यक्ष में कभी सामान्य की निश्चयात्मकता और सार्वभौमता नहीं आ सकती। इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आवश्यक है, किंतु जब तक वह बुद्धि द्वारा पुष्ट न हो उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रथम तो बुद्धि द्वारा बिना सविकल्प बने प्रत्यक्ष इंद्रिय संवेदन मात्र रहता है, ज्ञान नहीं बनता। दूसरे प्रत्यक्ष ज्ञान का कभी अनुमान से बोध भी हो जाता है। पृथ्वी हमको चपटी और स्थिर दिखाई देती है, परंतु है गोल और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इंद्रियां प्रायः धोखा देती हैं, अतः युक्त होने पर ही प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जा सकता है। यही दशा आगम प्रमाण की है, उसे भी युक्त होने पर ही प्रमाण मान सकते हैं। दर्शन का साधन है निगमनात्मक सविकल्प तर्क, और इसकी ज्योति आती है स्वतः सिद्ध निर्विकल्प अनुभूति से। डेकार्त की दार्शनिक पद्धति है संदेह की, किंतु डेकार्त संदेहवादी या स्केप्टिक नहीं है, वे कट्टर बुद्धिवादी रेशनलिस्ट। संदेह उनके लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं। सत्य निश्चयात्मक है, किंतु निश्चय पर पहुंचने के लिए संदेह आवश्यक है। यदि संशय न हो तो निश्चय कैसा? संशय ज्ञान का स्रोत है। दार्शनिक के लिए आवश्यक है कि वह किसी सिद्धांत पर पहुंचने के पूर्व हर प्रकार की पूर्व मान्यताओं, पूर्व धारणाओं या पक्षपातों से रहित होकर विचार करे। इंद्रिय प्रत्यक्ष या आगम से अमुक बात प्रमाणित होती है, अतः वह सत्य है, इस प्रकार विचार ठीक नहीं। पृष्ठ संख्या 92। यह रूढ़िवाद है, पक्षपात है, अंधविश्वास है। यह दार्शनिकों को शोभा नहीं देता। दर्शन का उद्गम संशय में है। ग्रीक युग में प्लेटो ने कहा था कि ज्ञान का उद्गम आश्चर्य है, या फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर। मध्य युग में शास्त्रीय विचारक कहते थे कि ज्ञान का उद्गम विश्वास है, या क्रेडो यूट इंटेलिगम। आधुनिक युग में डेकार्त ने कहा कि ज्ञान का उद्गम संदेह है, या डिबिटो यूटो इंटेलिगम। डेकार्त के पहले पाइरो, सेक्स्टस, आदि संदेहवादी हो चुके हैं, किंतु उन्होंने संदेह का महत्व ठीक न समझा और उसी को भूल से अपना लक्ष्य बना लिया। डेकार्त इस परंपरा में नहीं है, उनकी परंपरा है संत अगस्टाइन और कैंपानेला की। इन दोनों के विचारों का, जैसा हम पहले कह चुके हैं, डेकार्त पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। मोंटेन और बेकन ने भी संदेह को अपनाया था, किंतु वे इसे दार्शनिक पद्धति का रूप नहीं दे सके। डेकार्त इस विषय में उनसे आगे हैं। यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि डेकार्त की पद्धति संदेह की होने पर भी वे संदेहवादी नहीं हैं। संदेहवादी संशयात्मा होता है, संशय ही उसका प्राण, उसका लक्ष्य, उसका साध्य होता है। वह निश्चित सत्य को नहीं मानता। डेकार्त के अनुसार सत्य स्वतः सिद्ध और निश्चयात्मक है। सत्य की सार्वभौमता, सहजता, अबाधिता और निश्चयात्मकता डेकार्त को सर्वथा मान्य है, किंतु इस सत्य की प्राप्ति का साधन है संदेह। निश्चयात्मक सत्य साध्य है, संदेह साधन है, सत्य उपेय है, संदेह उपाय है, सत्य लक्ष्य है, संदेह लक्षण है, सत्य गंतव्य स्थल है, संदेह मार्ग है। जो संदेह को साधन के रूप में अपनाता है, वह बुद्धिवादी सत्य तक पहुंच जाता है, किंतु जो संदेहवादी संदेह को ही साध्य मान लेता है, उसका विनाश निश्चित है। संदेह अंधविश्वास और पक्षपात को मिटाने के लिए है, सत्य को मिटाने के लिए नहीं। प्रसिद्ध कथन है, संशयात्मा विनश्यति। डेकार्त का तात्पर्य है, संशयेन विजानात् संशयात्मा विनश्यति। अतः संदेह डेकार्त के दर्शन का आदि है, अंत नहीं। डेकार्त के संदेह का यही अर्थ है कि बिना किसी अंधविश्वास या पक्षपात या पूर्व मान्यता के निष्पक्ष विचार किया जाए, और जब तक कोई भी वस्तु अपना सत्ता को इतना सुस्पष्ट प्रकाशित न कर दे कि उसके विषय में संदेह को कोई स्थान न रहे, तब तक उसे सत्य न माना जाए। अपनी इस संदेह पद्धति से डेकार्त ने इस प्रकार विचार करना प्रारंभ किया। पृष्ठ संख्या 93। अभी तक मैं जिसे सर्वथा सत्य और निश्चयात्मक मानता आया हूँ, वह ज्ञान मुझे या तो इंद्रियों से साक्षात मिला है या इंद्रियों के द्वारा, किंतु मुझे इंद्रियों ने कई बार धोखा दिया है। और बुद्धिमानी इसी में है कि जो एक बार धोखा दे जाए, उसका पूरा विश्वास कभी न किया जाए। कुछ बातों में इंद्रियां भले ही धोखा दे जाएं, किंतु बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें इंद्रियां धोखा नहीं देती। उदाहरणार्थ, मैं कैसे संदेह करूं कि मैं यहाँ आग के पास रात के कपड़े पहने और हाथ में यह कागज लिए बैठा हूँ। यह मैं कैसे कहूँ कि ये हाथ और यह शरीर मेरा नहीं है? यह कथन पागलपन होगा, किंतु स्वप्न में मैं कई बार ऐसा पागलपन कर देता हूँ जो पागल लोग जागृत में करते हैं। स्वप्न और जागृत में कोई निश्चित भेद नहीं प्रतीत होता। अस्तु, यदि यह मान ले कि हम सो रहे हैं और हमारी क्रियाएं जैसे आंखें खोलना, सर हिलाना, हाथ फैलाना आदि सब मिथ्या भ्रम है, तो भी यह मानना पड़ेगा कि स्वप्न में हम जिन पदार्थों को देखते हैं वे चित्रों के समान हैं और ये चित्र यथार्थ और सत्य वस्तुओं के आधार पर ही बनाए जा सकते हैं। अतः जागृत के पदार्थों को सत्य और सत मानना पड़ेगा और गणित के सिद्धांतों को जैसे दो और तीन मिलकर पांच होते हैं कैसे मिथ्या माना जा सकेगा। मेरा यह पुराना विश्वास रहा है कि ईश्वर है, उन्होंने यह सृष्टि बनाई है, उन्होंने मुझे उत्पन्न किया है, ईश्वर मंगलमय और सत्य स्वरूप है। मैं यह कैसे मानूं कि उन्होंने यह सृष्टि मुझे धोखा देने के लिए बनाई है? तब क्या मैं समझूं कि यह कार्य शैतान का है या सब मेरी ही कल्पना है? अस्तु, यदि इन सब दृश्य पदार्थों को असत मान लिया जाए, इनको निराभ्रम कहा जाए, तो भी एक बात में संदेह का तनिक भी अवकाश नहीं, और वह है मेरी सत्ता। ज्यों ही मैं कोई विचार करता हूँ त्यों ही मेरी सत्ता सामने आती है। मैं कुछ भी कहूँ, सोचूं, विचारूं, उन सब में मेरा अस्तित्व अंतर्निहित है। इस विषय में मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता। अतः भली भांत सोच लेने के बाद और प्रत्येक बात की सावधानी से परीक्षा कर लेने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचने और इस सत्य को मानने के लिए बाध्य हूँ कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान मेरा स्वरूप है। यदि मैं अपने अस्तित्व का निराकरण भी करूँ तो उस निराकरण में मेरा भी अस्तित्व प्रकट होकर सामने आता है, क्योंकि मैं ही तो निराकर्ता हूँ। मेरी सत्ता का अपलाप नहीं हो सकता, ज्ञाता का ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अत्यंत सुस्पष्ट और निःसंदेह स्वतः सिद्ध है कि मैं ज्ञाता हूँ, अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है, अर्थात कैगिटो अर्गो सम, पृष्ठ संख्या 94। इस प्रकार डेकार्त आत्मा की स्वतः सिद्धता और स्वप्रकाशता का प्रतिपादन करते हैं। उनकी संदेह पद्धति आत्मा के आगे समाप्त हो जाती है। यहाँ संदेह को अवकाश नहीं, यह आत्म तत्व स्वतः सिद्ध सत्य है। संत अगस्टाइन ने भी यही कहा था, यदि मैं अपना निराकरण करूँ तो भी मेरी सत्ता अनिवार्य है, या सी फेलोरसम। केम्पाल नेला ने भी यही कहा था, मैं ज्ञाता हूँ अतः मैं स्वतः सिद्ध हूँ। डेकार्त ने इसे अत्यंत सुस्पष्ट कर दिया है, स्वसंवेदन का निषेध नहीं हो सकता, ज्ञाता के ज्ञान का निराकरण नहीं हो सकता, दृष्टा की दृष्टि का विप्रलोप नहीं हो सकता। आत्मा की सत्ता सर्वप्रथम असंदिग्ध और स्वतः सिद्ध सत्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यह सत्य निगमनात्मक तर्क से उपलब्ध नहीं होता, यह अनुमान नहीं है, इसको निगमन तर्क की देन समझना भारी भूल होगी। जो ज्ञाता है उसकी सत्ता अनिवार्य है, मैं ज्ञाता हूँ, अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है। इस प्रकार इस सत्य को निगमन तर्क पद्धत का निष्कर्ष मानना भ्रम है। यह अनुमान नहीं, निर्विकल्प अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष या सम कैरिटन्स है। यह स्वतः सिद्ध अनुभूति है। इसका सत्ता से ही प्रमाण कार्य करते हैं। यह स्वयं प्रमाणों से सिद्ध नहीं होती। इस स्वतः सिद्ध सत्य को डेकार्त ने अपने दर्शन का आधार बनाया और इसी को सत्य का मापदंड बनाया। जो वस्तु आत्मा के समान स्वतः सिद्ध और संदेह अतीत हो, वही सत्य है। डेकार्त का महत्व उनकी संदेह पद्धति और स्वतः सिद्ध ज्ञाता के साधन साध्य भाव के प्रतिपादन में है। स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश आत्म तत्व की महिमा डेकार्त ने गाई है। यह आत्म तत्व निर्विकल्प अतिन्द्रिय स्वानुभूति है। यह बुद्धि का विषय नहीं, सविकल्प बुद्धि में इसी की ज्योत चमकती है। ये डेकार्त के दर्शन के महत्वपूर्ण विचार हैं और अभी तक अमर हैं। इनके ही कारण डेकार्त को आधुनिक युग का संस्थापक माना जाता है। जिस आत्म तत्व की महिमा उपनिषदों और वेदांत ने गाई, उसी का यशोगान डेकार्त ने किया। किंतु इसके आगे डेकार्त ने आत्मा को ठीक ठीक नहीं समझा। वे स्वयं स्वतः सिद्धि और स्वप्रकाशता के सिद्धांत को पूर्ण रूपेण नहीं जान सके। आत्मा को वे केवल परमित जीवात्म के अर्थ में ही समझते रहे। पृष्ठ संख्या 95। स्वतः सिद्ध आत्मा परमात्मा है। वह अद्वैत स्वरूप है। वही एकमात्र सत है। अन्य सब कुछ उसी की सत्ता का आभास है। इन तत्वों तक डेकार्त नहीं पहुंच सके। वे इसी भ्रांति में रहे कि यह परछिन्न जीव ही शुद्ध आत्मा है। इसीलिए वे कट्टर द्वैतवादी हैं। यह उनके दर्शन का बड़ा भारी दोष है। डेकार्त के दर्शन को हम बुद्धिवाद, रूढ़िवाद, ईश्वरवाद, द्वैतवाद और चिदचित संयोगवाद कह सकते हैं। और ये सभी विचार किसी न किसी अंश में दोषपूर्ण हैं। डेकार्त बुद्धिवादी हैं, क्योंकि वे ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष या आगम को मानकर बुद्धि को मानते हैं और बुद्धि की तत्व ग्रहण की क्षमता में अटल विश्वास रखते हैं। गणित के ज्ञान को वे आदर्श मानते हैं और वे ज्ञान का उद्गम इंद्रिय अनुभव में न मानकर सहज बुद्धि में मानते हैं। इन दोनों अर्थों में वे बुद्धिवादी हैं। वे रूढ़िवादी हैं, क्योंकि चर्च की बहुत सी परंपराएं उन्हें मान्य हैं। वे ईश्वरवादी हैं, क्योंकि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं तथा ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानते हैं। वे द्वैतवादी हैं, क्योंकि वे चित और अचित रूपी दो परस्पर स्वतंत्र किंतु ईश्वर परतंत्र तत्वों की पृथक पृथक सत्ता स्वीकार करते हैं। वे चिद चित संयोगवादी हैं, क्योंकि उनके अनुसार इन दोनों तत्वों का एक दूसरे से संयोग होता है और एक की क्रिया के कारण दूसरे में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। डेकार्त ने पदार्थ के तीन विभाजन किए हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य या सब्सटेंस वह है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो और जिसके ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा न हो। द्रव्य के अपृथक सिद्ध या इनसेपरेबल और स्वरूप या इसेंशियल धर्मों को गुण या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अन्य आगंतुक या एक्सीडेंटल धर्म पर्याय कहलाते हैं। द्रव्य तत्व है क्योंकि उसकी वास्तविक और स्वतंत्र सत्ता है। डेकार्त ने तीन तत्व माने हैं, ईश्वर, चित और अचित, और उनके दर्शन में इस तत्व त्रय का ही प्रमुख विचार किया गया है। सबसे पहले संदेह पद्धति द्वारा चित्त की सत्ता स्वतः सिद्ध रूप में उपस्थित होती है, इसका विचार ऊपर किया जा चुका है। चैतन्य रूप आत्म तत्व का अपलाप नहीं किया जा सकता, मैं ज्ञाता हूँ अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है, यह निर्विकल्प अनुभूति अबाधित है। पृष्ठ संख्या 96। डेकार्त के अनुसार यह आत्मा जीव ही है। जीव परमित और परिच्छिन्न है, उसका ज्ञान दर्शन और आनंद परमित है। जीव अनेक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति से होता है और अन्य आत्माओं का निगमनात्मक अनुमान से। इस प्रकार डेकार्त ने अनेक जीववाद सिद्ध किया। उनका चित तत्व विशुद्ध आत्मा नहीं है, वह विशुद्ध चैतन्य और अंतःकरण का मिश्रण है, वह जीवात्मा है। चित की सिद्धि होते ही अचित की भी सिद्धि हो जाती है। चित अचित का अनुभव करने के लिए ही है। चिदात्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है, अतः उसे ज्ञेय कार्य और भोग्य की अपेक्षा है। यही अचित या जड़ तत्व है, ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है, अतः यह अचित धोखा या भ्रम नहीं हो सकता। ईश्वर परम कृपालु प्रभु हैं, वे हमें धोखा देने के लिए सृष्टि नहीं रचते। सृष्टि को भ्रांति समझना ईश्वर का अपमान करना है। इस प्रकार चित और अचित इन दो तत्वों की सिद्धि होती है। दोनों द्रव्य हैं क्योंकि दोनों की एक दूसरे से स्वतंत्र सत्ता है। दोनों परस्पर निरपेक्ष और विरुद्ध हैं, एक चेतन है दूसरा जड़। दोनों की पृथक और समान सत्ता है, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। चित्त की स्वतः सिद्धि का ज्ञान होते ही जैसे एक ओर उसके ज्ञेय कार्य भोग्य अचित की सिद्धि होती है, वैसे ही दूसरी ओर उसके नियंता और सृष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता भी साथ ही सिद्ध हो जाती है। ईश्वर चित और अचित दोनों के स्वामी और नियंता हैं, वे दयालु हैं, वे सत्य और शिव हैं, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति है। वे सृष्टि के निमित्त कारण मात्र हैं, उपादान कारण नहीं। सृष्टि का उपादान कारण अचित तत्व है। ईश्वर सृष्टि के पार दिव्य लोक के निवासी हैं, ईसा मसीह उनके सुपुत्र हैं। उनके धर्म पर चलने से मनुष्य दिव्य ज्ञान और आनंद के अनुभव में भाग ले सकता है।